दिल्ली। सुबह लगभग 8 बजे थे। द्वारका सेक्टर 8 में बना शर्मा निवास नामक 3 मंजिला घर। घर के अंदर गेट से होते हुए डाइनिंग रूम में प्रवेश किया जाता था। यहाँ एक सोफा सेट और टीवी लगा हुआ था। ड्राइंग रूम से जुड़ा हुआ किचन था, जहाँ श्रीमती जानकी देवी उस समय टिफिन पैक कर रही थीं। जानकी जी, शर्मा जी की पत्नी, सबके टिफिन पैक कर ही रही थीं कि एक जोड़ी कदमों की आहट के साथ किचन में खिलखिलाती आवाज़ गूंजी। माँ, जल्दी से मेरा लंच दे दीजिए, वरना मैं लेट हो जाऊंगी। आवाज़ का स्वर अंत तक आते आते बदल गया। जानकी जी ने आवाज़ पहचानते हुए देखा तो उनकी नज़र कशिश पर पड़ी। कशिश ने ब्लू टॉप, ब्लैक जीन्स पहनी हुई थी और गले में मल्टी कलर स्कार्फ डाला हुआ था। बाएं कंधे पर पर्स लटका हुआ था और वो घड़ी बांधते हुए जानकी जी की ओर बढ़ रही थी। जानकी जी ने हैरानी से पूछा, आज तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? कशिश रोज़ आराम से 9 बजे निकलती थी और आज 8 बजे की जल्दी की गाड़ी पकड़ रही थी, इसलिए जानकी जी हैरान थी। कशिश ने सिर उठाकर जानकी जी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आज जल्दी जाना है मम्मी, अब जल्दी से मेरा टिफ़िन और एक परांठा रोल करके दे दो, मैं खाते खाते चली जाऊंगी। पर आज तो तुम्हें, जानकी जी इतना ही बोल पाई थीं कि कशिश ने अपना लंच और एक परांठा उठाया और झट से किचन से बाहर भाग गई। आज मेरा ऑफिस जाना बहुत ज़रूरी है और बिल्कुल वक्त नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं आपकी बात वापस आकर सुनूंगी, बाय बाय। जानकी जी परेशान होकर उसे देखती रहीं। कशिश ने उन्हें कुछ और कहने का मौका दिए बिना किचन से बाहर निकलकर सीधे गेट की ओर बढ़ गई। वो जल्दी जल्दी पराठा खाते हुए तेज़ कदमों से गेट की ओर बढ़ गई थी और बेचैन निगाहें इधर उधर घूम रही थीं। शायद वो किसी से बचकर भागने की तैयारी में थी, इसलिए जल्दी से वहां से निकलना चाहती थी। वो अभी गेट के पास ही पहुंची थी कि एक तेज़, रौबदार, सख्त आवाज़ उसके कानों में गूंजी। कशिश, कहाँ जा रही हो तुम? आवाज़ सुनते ही कशिश के कदम रुक गए। उसका चेहरा पीला पड़ गया, आंखें भय से फैल गईं और चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगी। उसने अपने पर्स की जिप को मुट्ठी में जकड़ लिया, मुंह में मौजूद निवाला बड़ी मुश्किल से गले से नीचे उतारा। सीने में दिल डर के मारे जोर जोर से धड़कने लगा। वो अभी खुद को संभाल भी नहीं पाई थी कि फिर वही सख्त आवाज़ उसके कानों में गूंजी। तुमने सुना नहीं कशिश, कुछ पूछ रहा हूँ मैं तुमसे, कहाँ जा रही हो आज तुम? ये तेज़ गुस्से भरी आवाज़ सुनकर जानकी जी भी किचन से बाहर आ गई। उनका घबराया हुआ चेहरा ये जाहिर कर रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। कशिश डर के मारे आगे नहीं बढ़ सकी, उसकी हालत खराब थी, पर उसने किसी तरह खुद को संभाला और पीछे मुड़कर देखा तो उससे कुछ कदमों की दूरी पर श्याम जी खड़े थे और उनका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। कशिश ने थूक गले से नीचे उतारा और हिम्मत करके धीमी सी आवाज़ में बोली, वो पापा, पापा आज ऑफिस। बेचारी की जुबान डर के मारे कांप रही थी, इतना ही कह पाई थी कि श्याम जी की गुस्से भरी आवाज़ वहां गूंजी। किसने इजाज़त दी तुमको ऑफिस जाने की? बताया था ना मैंने तुम्हें कि आज तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तो तुम आज घर पर ही रहोगी। पर पापा, वो तो आज शाम को आएंगे ना, मैं दोपहर तक वापस आ जाऊंगी, पक्का। कशिश घबराई हुई सी एक ही सांस में सब बोल गई। उसकी बात पूरी होते ही हर्ष छट से बीच में बोला, इसकी बात पर विश्वास मत करना पापा, ये नहीं आएगी। हर्ष की बात सुनकर कशिश ने आंखें दरेड़ कर उसे घूरा, पर हर्ष शातिर तरीके से मुस्कुरा रहा था। श्याम जी ने भी हर्ष की बात का समर्थन करते हुए कहा, जानता हूँ मैं इस लड़की की हरकतें, इसलिए आज ये घर से बाहर कदम भी नहीं रखेगी। श्याम जी ने कठोर लहजे में अपना फैसला सुना दिया, पर कशिश उनके फैसले से सहमत नहीं थी। उसने तुरंत विरोध किया, पापा मेरा जाना जरूरी है, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी मुझे। तो आज से तुम्हें ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है, छोड़ दो जॉब, वैसे भी कुछ महीनों के अंदर मैं तुम्हारी भी शादी कर दूंगा, 10,000-12,000 की नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है अब तुम्हें। श्याम जी की बात सुनकर कशिश हैरान परेशान हो गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस जॉब के लिए उसने इतनी मेहनत की, श्याम जी ने उसे इतनी आसानी से छोड़ने को कह दिया। पापा, इतनी मुश्किल से मुझे ये जॉब मिली है, मैं ऐसे कैसे जॉब छोड़ सकती हूँ? और आप इतनी जल्दी मेरी शादी क्यों करवाना चाहते हैं? मुझे अभी शादी नहीं करनी है। कशिश आंखों में आंसू लिए उम्मीद से उन्हें देखने लगी, पर श्याम जी के चेहरे के सख्त भाव नहीं बदले। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, मैंने तुमसे पूछा नहीं है कशिश कि तुम्हें शादी करनी है या नहीं, मैंने एक बार कह दिया कि अब तुम्हारी शादी होगी तो मतलब होगी, अब से तुम्हें कोई जॉब करने की जरूरत नहीं है, जितने दिन घर में हो घर में रहकर घर के काम सीखो, वरना ससुराल जाकर भी हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दोगी। अब जाओ अपने कमरे में, आज शाम को 5 बजे लड़के वाले आएंगे, वक्त पर तैयार हो जाना और याद रहे कि शाम को कोई तमाशा नहीं चाहिए मुझे। अपना फैसला सुनाकर और कशिश को आंखों से ही वार्निंग देकर श्याम जी वहां से चले गए। हर्ष भी अपनी जीत पर हंसते हुए उनके पीछे पीछे चला गया। कशिश गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। घर में श्याम जी का आदेश पत्थर की लकीर था, उनकी बात काटने की हिम्मत किसी में नहीं थी। कशिश ने गुस्से में अपने कमरे का दरवाजा जोर से बंद किया और पर्स टेबल पर पटक दिया। फिर वो दौड़ते हुए बेड के पास आई, उसने अपने घुंघराले बालों को जूड़े में बांधा और पलंग पर आराम से बैठ गई। पलंग के साइड टेबल की दराज से चिप्स, नमकीन
के पैकेट निकालकर खाते हुए वो मन ही मन भुनभुनाती रही। सुबह से शाम हो गई। जानकी जी कई बार कशिश के रूम का दरवाजा खटखटा चुकी थी, उसे आवाज दे चुकी थी, पर कशिश का गुस्सा इतना ज्यादा था कि उसने ना ही दरवाजा खोला और ना ही जवाब दिया। श्याम जी सुबह से लड़के वालों के स्वागत की तैयारी में लगे थे। घड़ी ने शाम के 4:30 बजाए, तब उन्होंने कशिश के रूम का रुख किया। उन्हें देखकर जानकी जी, जो पिछले 10 मिनट से रूम का दरवाजा खुलवाने की कोशिश कर रही थी, वो घबरा कर पीछे हट गई। श्याम जी ने आंखें तरेड़ कर उन्हें घूरा और गुस्से में दांत पीसते हुए बोले, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। अगर इतना पढ़ाया ना होता इसे तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता है हमें। कहा था हमने आपको कि इस जिद्दी और बदतमीज लड़की को काबू में रखिए, पर आपने हमारी एक नहीं सुनी। अब देख लीजिए कैसे दिन प्रतिदिन इनकी बदतमीजी बढ़ती जा रही है। अभी भी वक्त है, अपनी बेटी को समझा दीजिए कि शांति से शादी कर ले। अभी तो अच्छा लड़का ढूंढ रहे हैं उनके लिए, पर अगर इनकी यही हरकतें रही और उन्होंने हमारे गुस्से को ललकारा तो जो मिलेगा उसी से शादी करवाकर अपने सर का बोझ उतार लेंगे हम। जानकी जी ने उनका गुस्सा देखकर और उनकी धमकी सुनकर तुरंत ही सहमति में सिर हिलाया, पर वो कुछ कह पाती उससे पहले ही तेज आवाज के साथ रूम का दरवाजा खुल गया और सामने खड़ी कशिश गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से चीख पड़ी, मैं शादी नहीं करूंगी। जानकी जी और श्याम जी दोनों की नजरें कशिश की तरफ गईं। कशिश का लहजा और उसकी बात श्याम जी के गुस्से को और भड़का गई। उन्होंने गुस्से से उसे घूरा और दांत पीसते हुए सवाल किया, क्या कहा आपने? श्याम जी बहुत गुस्से में लग रहे थे, पर कशिश भी उनकी बेटी थी और इस वक्त अपने बाप के सामने गुस्से से लाल पीली हुई खड़ी थी। इस बार कशिश जरा भी नहीं घबराई और उनकी निगाहों से निगाहें मिलाते हुए निर्भीकता से बोली, मैं शादी नहीं करूंगी। चटाक, कशिश की बात खत्म होते ही ये तेज आवाज वहां गूंजी। ये चांटा श्याम जी ने कशिश को मारा था। थप्पड़ इतना जोरदार था कि कशिश का छोटा सा सिर एक ओर को झुक गया, उसका हाथ उसके गाल पर चला गया, एक पल को सर चकरा गया उसका, कान सुन पड़ गया, आंखें छलक आईं। उसके गोरे गोरे गाल पर श्याम जी की उंगलियों का निशान साफ दिख रहा था।
जानकी जी ने ये मंजर देखकर घबराकर अपने मुंह पर हाथ रख लिया। कशिश अब भी कमजोर नहीं पड़ी। उसने पानीली निगाहों से श्याम जी को देखा और रुंधे गले से पर तेज आवाज में बोली, आज आप 1 या 10 थप्पड़ मार लीजिए मुझे, चाहे मुझे जान से ही मार दीजिए, पर मैं तब भी यही कहूंगी कि मैं शादी नहीं करूंगी। श्याम जी ने उसकी बात सुनकर गुस्से में भड़कते हुए एक बार फिर उस पर हाथ उठाना चाहा, पर इस बार जानकी जी जल्दी से उनके बीच में आ गई और घबराकर श्याम जी को देखने लगी। क्या करते हैं जी, कोई बाप अपनी जवान बेटी पर हाथ उठाता है क्या? किसी की बेटी ऐसे अपने बाप से नजरें मिलाकर ऐसी बेशर्मी भी नहीं दिखाती। इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी बात काटने की, हमारे खिलाफ जाने की, हमसे जुबान लड़ाने की? हम कुछ कहते नहीं तो अपनी मनमानी करते हुए बहुत सर चढ़ गई है। आज हम इन्हें दिखाते हैं कि हम कौन हैं। उनकी बातें सुनकर डर के मारे जानकी जी की हालत खराब हो गई। उन्होंने घबराकर कहा, बच्ची हैं जी, मैं समझा दूंगी उसे। वक्त हो गया है जी, आप जाकर मेहमानों को देखिए, मैं कशिश को तैयार करके लाती हूँ। वो लड़के वालों के सामने आ जाएगी और कुछ करेगी भी नहीं, वही करेगी जो आप चाहते हैं। जानकी जी ने श्याम जी का ध्यान कशिश से हटाकर मेहमानों की तरफ खींचा तो श्याम जी का ध्यान भी उस तरफ गया, लेकिन उनका गुस्सा अभी काम नहीं हुआ था। उन्होंने गुस्से से लाल आंखों से पीछे खड़ी कशिश को घूरा और दांत पीसते हुए बोले, इसी में भलाई है इनकी, अगर हमारी बात मानेंगी तो इज्जत से विदा होगी इस घर से, वरना जैसे तैसे शादी तो हम करवा कर रहेंगे उनकी, चाहे फिर उनके साथ जबरदस्ती ही क्यों ना करनी पड़े। आप समझा दीजिए अपनी बेटी को कि लड़कों वालों के सामने कोई तमाशा ना करें और वही करें जो हम कह रहे हैं। अगर आज इन्होंने कुछ गलत किया तो 2 दिन के अंदर उनकी शादी करवाकर इस घर से निकाल देंगे और दोबारा कभी यहाँ कदम भी नहीं रखने देंगे। श्याम जी कशिश और जानकी जी को धमकाकर वहाँ से गुस्से में चले गए। जानकी जी ने पलटकर कशिश को देखा और उसके गाल को प्यार से सहलाते हुए दुखी मन से बोली, क्यों अपने बाप से जुबान लड़ाती हो, देखा आज हाथ उठा दिया तुम पर। उनकी बात सुनकर कशिश ने नम आंखों से उन्हें देखा और उन्धे स्वर में बोली, मैं शादी नहीं करूंगी माँ। क्यों जिद कर रही है बेटा, अभी जांच पड़ताल कर रहे हैं, अगर आप ऐसे करेंगी तो किसी भी राह चलते आवारा लड़के से शादी करवा देंगी आपकी। अपनी मम्मी की बात मान लीजिए और शांत हो जाइए, जैसा वो कहते हैं वैसा ही कीजिए, वरना वो हमारी भी नहीं सुनेंगे। जानकी जी ने उसे समझाने की कोशिश की, इस बार कशिश कुछ नहीं बोली, बस जानकी जी का हाथ हटाकर गुस्से में पैर पटकते हुए अंदर चली गई। आंखों में एक आंसू नहीं गिरने दिया उसने। उसके पीछे जानकी जी ने भी कमरे में कदम रखा और वहां का हाल देखकर उन्होंने अपना सर पकड़ लिया। ये क्या हाल बनाया है कशिश तुमने कमरे का? कशिश के बेड से लेकर रूम में हर जगह चीजों के खाली रैपर फैले हुए थे। कशिश खाने की शौकीन थी और जब परेशान या दुखी होती है तो और ज्यादा खाती थी, इसलिए रूम में अपना स्टॉक जमा कर रखा था उसने। आज उसने दिन भर में अपना पूरा स्टॉक खाली कर दिया था और खाली पैकेट पूरे रूम में फैले हुए थे। जानकी जी का सवाल सुनकर कशिश ने बेड पर पड़ा कुरकुरे का पैकेट उठाया जो आधा खाली था और कुरकुरे मुंह में भरते हुए बोली, भूत लड़ी थी मुझे तो खा लिया थाला।
कशिश का मुंह भरा होने के कारण शब्द साफ साफ बाहर नहीं निकल सके, पर जानकी जी उसकी बात समझ गई और आगे बढ़कर उसके हाथ से कुरकुरे का पैकेट लेते हुए कहा, बस करो कशिश, इतनी बाहर की चीज खाना ठीक नहीं। जाओ जाकर हाथ मुंह धोकर आओ, जल्दी से तैयार होना है तुम्हें। लड़के वाले आते ही होंगे, अगर देर हुई तो तुम्हारे पापा फिर गुस्सा करेंगे। अपने पापा का जिक्र सुनते ही कशिश का मुंह बन गया और वो जानकी जी के बहुत कहने पर पैर पटकती हुई बाथरूम में जाते हुए मन ही मन बोली, जो करना है कर लो आप लोग, पर मैं शादी नहीं करूंगी। मैं यहाँ रहूंगी ही नहीं तो किसकी शादी करवाएंगे आप लोग? मुझे आपके और दीदी जैसी जिंदगी नहीं जीनी है। मैं भाग जाऊंगी यहाँ से, मर जाऊंगी, पर कभी शादी नहीं करूंगी। कशिश मन ही मन फैसला कर चुकी थी। इसके बाद वो अच्छे बच्चे की तरह जानकी जी की बात मानती गई। कुछ देर में लड़के वाले आ गए। कशिश को किसी शोपीस की तरह उनके सामने बिठाया गया। कशिश से सवाल जवाब किए गए। ये सब करीब 2 घंटे चला। फिर वो लोग वापस चले गए और कशिश इस अनचाही मुसीबत से छुटकारा पाकर अपने रूम में चली आई। उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था, पर क्या, ये बस वही जानती थी। कशिश और ईशान दो अलग अलग जगह पर अपनी अपनी मुश्किलों से घिरे थे। कैसी होगी इनकी पहली मुलाकात और कैसे शुरू होगी उनकी प्रेम कहानी, जानने के लिए पढ़ते रहिए इश्क मुबारक। जल्द ही।